ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। काठमांडू की नागार्जुन नगरपालिका के मेयर मोहन बहादुर बसनेत के खिलाफ भ्रष्टाचार और संपत्ति शुद्धिकरण के अभियोग में विशेष अदालत में किया गया मुकदमा दर्ज। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के षड्यंत्र प्रति सरकार सचेत है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए निर्देशिका तैयार करने के लिए समिति का किया गया गठन। और दक्षिण कोरिया के विमान में हादसे में 179 लोगों की मौत, 2 लोगों को जिंदा बचाया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी किया है। सरकार की सिफारिश में राष्ट्रपति पौडेल ने सहकारी संबंधी कुछ नेपाल आयन को संशोधन करने का अध्यादेश 2081 जारी किया है। ये जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा आज जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने काठमांडू की नागार्जुन नगरपालिका के मेयर मोहन बहादुर बसनेत के विरुद्ध विशेष अदालत में केस दर्ज किया है। मेयर बसनेत के विरुद्ध अख्तियार ने भ्रष्टाचार और संपत्ति शुद्धिकरण के अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले में 9,22,00,000 रूपये से अधिक और संपत्ति शुद्धिकरण मामले में 13,22,00,000 रूपये क्लेम करते हुए आयोग ने मुकदमा दायर किया है। मेयर बसनेत के साथ ही उनकी पत्नी उर्मिला बसनेत और राजू प्रसाद खड़ेल के विरुद्ध भी केस दायर किए गए हैं। ये बात विशेष अदालत के सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मी ने दी। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि सरकार देश और जनता के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। नेकपा एमाले परसा द्वारा आज आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार ने लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है और सरकार बदलाव लाने वाले नतीजे लाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार ने कृषि व्यवसाय के आधुनिकीकरण और उत्पादकता में वृद्धि, हुलाकी राजमार्ग का विस्तार, पूर्व पश्चिम रेलवे, सुनकोसी मरीन, कमला डायवर्जन का निर्माण, काठमांडू तराई फास्ट ट्रैक का निर्माण जैसे विकास परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता दी है। ये उल्लेख करते हुए कि सरकार पड़ोसी देशों के साथ संबंध खराब करने और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की साजिश से अवगत है, प्रधानमंत्री ओली ने अनावश्यक अफवाहों पर ध्यान न देने का भी आग्रह किया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल अपने दोनों पड़ोसियों और मित्र देशों के सहयोग और सद्भावना को हमेशा बरकरार रखते हुए आगे बढ़ेंगे। नेकपा एमाले के अध्यक्ष समेत रहे प्रधानमंत्री ओली ने नेताओं कार्यकर्ताओं को आने वाले दिनों में पार्टी संगठन को मजबूत करने के अभियान में शामिल होने का निर्देश भी दिया है। कार्यक्रम में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजकुमार गुप्ता ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ ही रोजगारी सृजित करने की ओर सरकार का ध्यान केंद्रित है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि उनका साझा लक्ष्य एक सुंदर, शांतिपूर्ण और समृद्ध नेपाल बनाना है। नेकपा एमाले केंद्रीय कार्यालय चैसल में आज आयोजित कार्यक्रम में एमाले अध्यक्ष ओली ने कहा कि भले ही विभिन्न व्यवसायों के लोगों की रुचि अलग अलग है, लेकिन सामान्य लक्ष्य एक समृद्ध नेपाल है। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने कहा कि संघीय शिक्षा आयन जल्द ही लाया जाएगा। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय द्वारा आज विराटनगर में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री भट्टराय ने ये बात कही। शिक्षा क्षेत्र को समस्याग्रस्त बताते हुए इसमें सुधार के लिए कानून बनाना जरूरी बताते हुए मंत्री भट्टराय ने कहा कि सरकार कानून बनाने के साथ साथ व्यावहारिक पहलू को भी मजबूत करने के पक्ष में है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए निर्देशिका तैयार करने के लिए 10 सदस्यीय समिति का गठन किया है। डॉ दीपक प्रकाश महरा के संयोजकत्व में गठित समिति एक माह के भीतर ऑटिज्म रोकथाम विषय पर अध्ययन कर ऐसे विषय सुझाएगी जिन्हें स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यक्रम में शामिल किया जा सके। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉ प्रकाश बुड़ा थोकी ने कहा, इस तरह समिति ऑटिज्म के क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्था और विकास भागीदारों के साथ सहयोग का खाका भी तैयार करेगी। नेपाल की 2078 की जनगणना के अनुसार ऑटिज्म से पीड़ित लोगों की संख्या 4,884 है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि नेपाल में लगभग 3,00,000 लोगों को ये समस्या है। देश के संघीय संरचना में आने के साथ ही भोजपुर की 2 नगर पालिकाओं और 7 गांव पालिकाओं ने विकास की गतिविधियों को आगे बढ़ाया, जिससे जिले के चेहरे को ही बदल दिया गया है। सीमित स्रोत का अधिकतम सदुपयोग करते हुए स्थानीय तहों ने प्रदेश और केंद्र सरकार के समन्वय में सड़क पूर्वाधार के साथ ही पर्यटकीय क्षेत्र सहित दीर्घकालीन महत्व वाली परियोजनाओं की शुरुआत कर दी है, जिससे जनता को स्थानीय सरकार के होने का एहसास हो रहा है। वहां के स्थानीय लोग बताते हैं कि स्थानीय सरकार के आने के बाद से जिले में सड़क, पुल, पेयजल, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगायत क्षेत्रों में जनता को एहसास कराने जैसा विकास हुआ है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने भ्रष्टाचार निवारण आयन 2059 के प्रभावकारी क्रियान्वयन की बात पर जोर दिया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नेपाल द्वारा आज काठमांडू में आयोजित अंतर्क्रिया में सांसदों ने कहा कि सर्वसाधारण के सुख शांति और आर्थिक हितों के लिए भ्रष्टाचार निवारण आयन का प्रभावकारी क्रियान्वयन होना जरूरी है। सल्यान में पके हुए संतरों में काली फफूंदी लगकर पेड़ की सूखना शुरू हो गया है, जिसको लेकर किसान काफी चिंतित है। 7 रोपनी यानी 10.5 कट्ठा से अधिक जमीन में संतरे की खेती करते आ रहे छत्तेश्वरी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 द खोला के किसान टीकाराम बुढ़ा के बगीचे में बीते भाद्र महीने से संतरे में काली फफूंदी लगना शुरू हुआ। ये बताते हुए कि उन्होंने दवा भी डाली लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने इसके समाधान के लिए पहल करने का खुला आग्रह भी किया है। बता दें कि छत्तेश्वरी के ज्यादातर संतरा बगीचों में ही काली फफूंदी की समस्या है। कृषि विकास कार्यालय सल्यान के कार्यालय प्रमुख महेश आचार्य ने कहा कि धूप कम लगने वाले और ओस वाले स्थानों में फफूंदी की समस्या होती है, इसलिए वैसे स्थानों पर संतरा तोड़ लेने के बाद वहां विषादी का प्रयोग करना चाहिए। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल पीएसबी को ऐतिहासिक अवसर को उपलब्धि में बदलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी बातें कही गई हैं। नेपाल पत्रकार महासंघ की रेडियो नेपाल प्रतिष्ठान शाखा की नव निर्वाचित कार्य समिति को पदभार हस्तांतरण एवं बधाई और शुभकामना कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया गया कि चूंकि रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन दोनों का भविष्य पीएसबी से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी को इसे सफल बनाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कार्यक्रम में सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ महेंद्र विष्ट ने सभी संबंधित पक्षों से पीएसबी के मिशन को पूरा करने के लिए परिणाम उन्मुख तरीके से जनता केंद्रित सामग्री का उत्पादन करने का आग्रह किया। उन्होंने दोनों संस्थानों के लाभ के लिए संस्था से संबंधित नियमों, विनियमों और कर्मचारी समायोजन के साथ साथ समयबद्ध तरीके से काम करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और कर्मचारियों से अपने व्यवहार में सुधार लाने और परिणाम उन्मुख तरीके से काम करने का आग्रह किया। नेपाल पत्रकार महासंघ की अध्यक्ष निर्मला शर्मा ने कहा कि पीएसबी के मूल भाव के साथ सभी को आगे बढ़ने की जरूरत है। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम न्यौपाने ने पीएसबी के उद्देश्य अनुसार योजना बनाकर आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर दिया। सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपाल के नायब कार्यकारी निदेशकों खगेन्द्र खत्री और चंद्रभूषण लाल दास ने पीएसबी को गर्व करने लायक संस्था बनाने के लिए रेडियो नेपाल और नेपाल टेलीविजन में काम करने वाले सभी लोगों के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। नेपाल और भारत के बीच सैन्य अभ्यास का 18वां संस्करण परसों मंगलवार से रूपंदेही के सालझंडी में शुरू होगा। पूस 29 गते तक चलने वाले सैन्य अभ्यास में नेपाली सेना का श्री जंग बटालियन और भारतीय सेना का 11वां गोरखा राइफल सहभागी होंगे। बटालियन स्तरीय संयुक्त सैन्य सूर्य किरण अभ्यास जंगल युद्ध भौगोलिक रूप में अति कठिन स्थल पर आतंकवाद के विरुद्ध अभियान संयुक्त राष्ट्र संघीय चार्टर के मुताबिक शांति स्थापना मानवीय सहायता लगायत की क्षमता अभिवृद्धि पर केंद्रित होगा। बता दें कि विक्रम संवत 2067 से वार्षिक रूप में नेपाल और भारत में बारी बारी से होती आ रहे सैन्य अभ्यास की 17वीं श्रृंखला पिछले साल भारत के पिथौरागढ़ में हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दक्षिण कोरिया के मुआन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज लैंडिंग के वक्त एक विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान में 181 लोग सवार थे, जिनमें से 175 यात्री और चालक दल के 6 सदस्य शामिल थे। दक्षिण कोरिया के अग्निशमन विभाग के मुताबिक इस हादसे में कम से कम 179 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों को मलबे से जीवित निकाला गया है और अस्पताल ले जाया गया है। जेजू एयर का ये विमान कथित तौर पर बैंकॉक से दक्षिण कोरिया वापस आ रहा था। बताया जा रहा है कि विमान के लैंड करते वक्त ये हादसा हुआ। ये विमान मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर स्थानीय समयानुसार करीब 9 बजे हादसे के शिकार हो गया। राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया कि हादसे की खबर मिलने के बाद दक्षिण कोरिया के कार्यवाहक राष्ट्रपति चोई सोंगमोक दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। कार्यालय का कहना है कि चोई ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद के लिए मैनपावर, स्वास्थ्य देखभाल और उपकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसमें कहा गया है कि सरकार पीड़ित परिवारों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। काठमांडू की नागार्जुन नगरपालिका के मेयर मोहन बहादुर बसनेत के खिलाफ भ्रष्टाचार और संपत्ति शुद्धिकरण के अभियोग में विशेष अदालत में किया गया मुकदमा दर्ज। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा सहकारी संबंधी अध्यादेश जारी। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने के षड्यंत्र प्रति सरकार सचेत है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की देखभाल के लिए निर्देशिका तैयार करने के लिए समिति का किया गया गठन। और दक्षिण कोरिया में विमान हादसे में 179 लोगों की हुई मौत, 2 लोगों को जिंदा बचाया गया। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।